जय धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 19 रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाउल तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीशव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक जो चारित्र मोक्ष अपना नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 146 पर आ गए। 146 यहाँ अब 7वीं मूल गाथा की समुत्कीर्तना उन्होंने की थी, उसका अर्थ हम देखते हैं। वो 141 नंबर की जो गाथा का अर्थ नीचे दिखा है हिंदी में बीच में है ना। एक समय में बांधे गए कितने कर्म प्रदेश, स्थिति के कितने भेदों में असंक्षुब्ध रहते हैं, तथा कितने भवबद्ध कर्म प्रदेश, स्थिति के कितने भेदों में असंक्षुब्ध रहते हैं, ये तो प्रश्न पूछा था। अब उसका विस्तार से यहाँ चर्चा चलेगी। एक पैराग्राफ फिर पढ़ता हाँ, अभी उसका अर्थ नहीं किया परंतु संचित किए गए ऐसा समझना। असंक्षुब्ध है ना, अनुदरित अच्छुत था ना, संचित किया अच्छुत्ता नहीं और संक्षुब्ध। हाँ, उदय स्थिति को नहीं प्राप्त कराए गए रहे, यानी अभी सत्ता में पड़े हैं, संचित रूप से पाए जाते हैं, निकल नहीं गए। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये फिर से हम दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे 398 नंबर का। अंतरकरण क्रिया के संपन्न करने के प्रथम समय से लेकर अंतर करने के पश्चात उपरीम समय में विद्यमान इस क्षपक के कितने समय प्रबद्ध तथा कितने भवबद्ध कर्म प्रदेश उदय में असंक्षुब्ध रूप से संभव है, तथा संभव उनका कितने स्थिति भेदों में और अनुभाग भेदों में अवस्थान होता है, उदय में कितने विद्यमान है और ऊपर के कितने निषेकों में कितने पड़े हैं, इस प्रकार इस तरह के अर्थ विशेष का निर्णय करने के लिए यह 7वीं मूल गाथा अवतीर्ण हुई है। वह जैसे एक समय पबद्धा पुनः वो ग करना मौका, ऐसा कहने पर एक समय में जितने कर्म प्रदेश बंध को प्राप्त होते हैं इनके समूह का नाम एक समय प्रबद्ध है, वो मुंह दीर्घ होना चाहिए था समूह, परंतु उसके समय भेद से संपन्न होने पर बहुत्व संभव है, यानी अलग अलग समयों में बांधे इसलिए अनेक समय प्रबद्ध, ऐसा अनेक वचन वहां बहुवचन वहां लिया है। इसलिए उनका एक समय पबद्धा इस प्रकार बहुवचन रूप से निर्देश किया यानी कथन किया, अथवा एक एक समय प्रबद्ध अनेक है न इसलिए एक एक की बात है। इस प्रकार विप्सा निर्देश के अवलंबन द्वारा, विप्सा ने वो एक एक बताना है अनेक बताना है उसको कहा, यह बहुवचन रूप निर्देश घटित हो जाता है। अभी इसका विस्तार अभी आने वाला है। इसलिए इस प्रकार कितने एक समय प्रबद्ध, कितने एक समय प्रबद्ध, एक समय बंधा हुआ एक समय प्रबद्ध, ऐसे कितने, तो कितने एक समय प्रबद्ध इस क्षपक के अछूते रहते हैं। क्या एक समय प्रबद्ध, दो समय प्रबद्ध या तीन समय प्रबद्ध, इस प्रकार जाकर क्या संख्या समय प्रबद्ध या असंख्या समय प्रबद्ध अछूते रहते हैं, इस प्रकार यह प्रथम पृच्छा निर्देश है। अभी उसी वो असंशुद्ध कहा, उसी को अछूते कह रहे हैं, अभी इसी को समझाएंगे। यानी अभी है रहे हैं सत्ता में असंशुद्ध की है, उसी को अच्युत्ता कहा है मूल गाथा में, अच्युत्ता उसी को हिंदी में असंशुद्ध कहा था। हाँ अभी उसको बताएंगे किस अपेक्षा से क्या कहना, ये तो प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार यह प्रथम पृच्छा निर्देश है। 147 पृष्ठ पर आए हम। इस मूल गाथा सूत्र में अच्युत्ता ऐसा कहने पर है ना, जीव के द्वारा अस्पृष्ट अर्थात उदय स्थिति को नहीं प्राप्त कराए गए रहते हैं। मैंने सत्ता में पड़े हैं, उदय को प्राप्त नहीं हुए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अथवा दूसरा, अच्युत्ता ऐसा कहने पर उदय में असंशुद्ध रहते हैं, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हाँ दोनों अभी उसको भी बताएंगे, क्योंकि चूर्णी सूत्र उसी के ऊपर आने वाले हैं। तो कहते हैं क्योंकि आगे चूर्णी सूत्र में उस प्रकार का निर्देश देखा जाता है, किंतु वे असंशुद्ध स्वरूप समय प्रबद्ध कहिम ठिदिशु स्थिति के कितने भेदों में पाए जाते हैं, यानी जो अभी उदय को नहीं प्राप्त है सत्ता में पड़े हैं, तो ऐसे कितने निषेकों में पड़े हैं, क्या एक स्थिति में, दो स्थितियों में या तीन स्थितियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार विशेष निर्देश की अपेक्षा रखने वाला यह दूसरा पृच्छा निर्देश है। कितने निषेकों में पड़े हैं इतना पूछना है,
सभी जो समय प्रबंध,
अभी वो पूरा टोटल बताएंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्रश्न है, वो स्वयं उसका उत्तर देंगे। मैंने भी आगे का पढ़ा नहीं है, इसलिए आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने के लिए अभी तो समर्थ नहीं हूँ। हम पूरा पढ़ेंगे फिर उसका स्पष्टीकरण स्वयं आएगा शायद। इस प्रकार इस कथन द्वारा देशामर्शक रूप से अनुभाग विषय भी पृच्छा निर्देश यहाँ पर करना चाहिए। अनुभाग विषय कैसा, कितने कृष्टियों में पढ़ा है ऐसा पूछेंगे, वो अनुभाग विषय पृच्छा, क्योंकि उपरिम भाष्य गाथा में उसकी भी विभाषा उपलब्ध होती है। पहले जो भाष्य गाथा हमने देखी थी पहले नंबर की, उसमें स्थिति के साथ अनुभाग को भी लिया था वहां पर। इस प्रकार असंशुद्ध स्वरूप समय प्रबद्धों की क्या कहते हैं, इस प्रकार इस कथन द्वारा नीचे इस प्रकार असंशुद्ध स्वरूप समय प्रबद्धों की संख्या विशेष की, यानी उनके नंबर कितने हैं, कितनी संख्या में, और उन्हीं के अवस्थान प्रायोग्य स्थिति और अनुभाग के भेदों की, अवस्थान प्रायोग्य यानी वो पड़े हैं सत्ता में, कितनी स्थितियों में उनका अवस्थान यानी विद्यमानता है, कहाँ कहाँ वो पड़े हैं, स्थितियों के भेद और अनुभाग भेद, इनकी इस गाथा सूत्र के पूर्वार्ध में पृच्छा की गई है। यहाँ पर इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। क्या क्या पूछा था? एक समय में बांधे गए कितने कर्म प्रदेश, यानी कितने समय प्रबद्ध, ऐसा उसका अर्थ क्या है ना। तो किस स्थिति के कितने भेदों में, स्थिति के अनुसार अनुभाग में भी लगा लेना। तो ये तो एक पूरे पूर्वार्ध हुआ गाथा का। अब आगे देखेंगे, यानी पूर्वार्ध है फर्स्ट लाइन, अभी उत्तरार्ध है दूसरी लाइन। अब उक्त गाथा सूत्र के उत्तरार्ध का अवलंबन लेकर भवबद्ध विषय पृच्छा का अनुगम करते हैं। वो जो हमने हिंदी पढ़ा था उसमें क्या पूछा था सेकंड लाइन में, कितने भवबद्ध कर्म प्रदेश, स्थिति के कितने भेदों में असंशुद्ध रहते, तो कितने भवों में बंधे हुए भवबद्ध। नहीं नहीं, वह जैसे भवबद्ध अच्युत ऐसा कहने पर एक भव ग्रहण में जितना कर्म पुद्गल संचित किया गया उसकी भवबद्ध संज्ञा है। हमने देखा था ना कितने भवों में, हमने तो एक इंद्रिय के असंख्यात भव देखे थे, पहले बात आई थी ना। तो कहते एक भव ग्रहण में जितना कर्म पुद्गल संचित किया उसकी भवबद्ध संज्ञा है, परंतु वह भव के भेद से और एक भव विषय समय प्रबद्धों के भेद से बहुत पने को प्राप्त हो जाता है। भव के भेद अनेक भव और एक भव में भी अनेक समय प्रबद्ध, इसलिए उसके में भी बहुवचन लगेगा। इसलिए वहां भवबद्धा पूछा था ना, इसलिए बहुवचन का निर्देश किया। ये समझ में आए ना बात, भवबद्ध नहीं कहा भवबद्धा कहा, क्योंकि भव भी अनेक है और एक भव में प्रति समय एक एक समय प्रबद्ध है, तो उस अपेक्षा से भी अनेकता है। इसलिए यहाँ पर सूत्र का अर्थ के साथ इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि कितने भवबद्ध समय प्रबद्ध, भवबद्ध करते हैं कितने भवबद्ध समय प्रबद्ध। इस क्षपक के उदय स्थिति में असंशुद्ध स्वरूप होते हैं, यानी अभी कितने भवों में बंधे हुए यहाँ अवेलेबल है, अभी पड़े हैं। क्या एक भव संबंधी या दो तीन आदि संख्यात और असंख्यात भव ग्रहण संबंधी समय प्रबद्ध उदय रूप से असंशुद्ध होते हैं, अथवा यानी अभी उदय में नहीं आए हैं उदय रूप से असंशुद्ध है, अथवा क्या सभी भवबद्ध समय प्रबद्ध उदय रूप में संशुद्ध होते हैं। यहाँ संशुद्ध पूछा संचुक्ता, या एक भी भवबद्ध समय प्रबद्ध उदय रूप से असंशुद्ध चाहिए, अक्षुब्ध हुआ है वो है सम चाहिए, या एक भी बौद्ध समय प्रबद्ध उदय रूप से लास्ट में अक्षुब्ध स्वरूप नहीं पाया जाता। वो बराबर है, वो लास्ट में असंशुद्ध चाहिए। ऊपर लिखा ना कि वहां सव्य भी भवबद्धा उदय पज्जा ने संचुत्ता चेव न एक को भी भवबद्ध तद अच्युत स्वरूप संभव, अच्युत ही लिखा है असंचुत्त नहीं लिखा, अच्युत ही लिखा है। अच्छा, उन्होंने अच्युत की परिभाषा ही असंशुद्ध किया है, ठीक है बराबर है। असंशुद्ध असंशुद्ध बीच में सम डालना चाहिए, इस प्रकार उसको शुद्ध भी कहा है, संशुद्ध को एक शुद्ध भी कहा है, ये सम नहीं डाले तो भी उन्होंने आगे वैसे ही लिखा है। इस प्रकार शुद्ध स्वरूप और अक्षुब्ध स्वरूप, यानी सम डालने की आवश्यकता नहीं है इससे सिद्ध होता है, उसको शुद्ध और अक्षुब्ध कहा। उन समय प्रबद्धों का कितनी स्थिति के भेदों में अथवा कितने अनुभाग विशेषों में अवस्थान संभव है, इस प्रकार यहाँ पर भी अनुभाग विषय पृच्छा का पहले के समान अंतर्भाव जान लेना चाहिए, उसको भी इंक्लूड समझना। इसमें स्थिति की पृच्छा की है, उसमें अनुभाग विषय भी पृच्छा है, ऐसा समझना चाहिए। ये तो केवल पूछा ही बताई है, अभी इसका तो उत्तर उसका और समाधान आ गया है। अथवा कमी ऐसा कहने पर किस स्थान पर भवबद्ध कितने समय प्रबद्ध असंशुद्ध स्वरूप प्राप्त होते हैं, इस प्रकार पुच्छा का संबंध करना चाहिए। और यह पुच्छा का निर्देश अंतरकरण से पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था की अपेक्षा से प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्त हुआ है, ब्रू हुआ है, वो उसका ब्रू करना प्रवृत्त। विशेषण, एक समय में एक जीव के द्वारा जितने कर्म प्रदेश बंध को प्राप्त होते हैं उनकी एक समय प्रबद्ध संज्ञा, उसको एक कहिए, एक समय प्रबद्ध। एक समय में एक जीव के द्वारा जितने कर्म प्रदेश बंध को प्राप्त होते तथा भव के भीतर जितने समय प्रबद्ध बंध को प्राप्त होते हैं उनकी भवबद्ध संज्ञा है। अब वो बहुत छोटे बड़े अनेक हो सकते हैं ना, अनेक प्रकार के, फिर उसको क्या कहेंगे, भवबद्ध। इन दोनों को लेकर यहाँ जो पूछाई की गई है उनका आशय यह है, एक नंबर अंतरकरण क्रिया संपन्न होने पर उसके प्रथम समय से लेकर एक या एक एक कर जो अनेक समय प्रबद्ध बनते हैं वे कितनी स्थिति और कितने अनुभाग के कितने भेदों में पाए जाकर उदय में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। क्या पूछा, अंतर किया क्रिया होने के पश्चात उसके प्रथम समय से लेकर एक या एक एक करके अनेक समय प्रबद्ध बनते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उदय में भी और ऊपर भी, तो दिखाई देते हैं कि नहीं देते, ये भी दूसरा प्रश्न। इस प्रकार भवबद्ध कर्म पुंज के विषय में भी यह पृच्छा कर लेनी चाहिए। भवबद्धा पद को लेकर अंतरकरण से पूर्व की अवस्था तथा अंतरकरण के बाद की अवस्था को लेकर भी उक्त पृच्छा की गई है, यह इस पूरे कथन का तात्पर्य है। और भी समझाएंगे। अब इस प्रकार इस सूत्र गाथा द्वारा सूचित किए गए अर्थ के विषय में निर्णय का विधान करने के लिए इस विषय में चार भाष्य गाथाएं आई है, क्योंकि अभी भी हमारा निर्णय कहाँ हुआ है ना, अभी भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है इस संबंध में, अब वो स्वयं बताएंगे। इसलिए यथाक्रम से ही उनकी समुत्कीर्तना और विभाषा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं, यानी इसी अर्थ को और समझाने के लिए चार भाष्य गाथा आने वाली है। एदिस से चत्तारी भाष्य गाहाओ, इस सातवीं मूल सूत्र गाथा की चार भाष्य गाथाएं हैं। यह सूत्र सुगम है। तासिम समुत्कीर्तना, अब उनकी समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है, अब यहाँ वो बताते हैं कहाँ बंधे हुए क्या है, इसकी बात अभी यहाँ स्पष्ट करेंगे। 142 नंबर की जो बात है अभी हम पढ़ेंगे। छन्नमावलियानम अच्युतानियम सा समय पबद्धा सौवे सुठि दिविशेषा अनुभागे सुच चहुन्नंती। अंतरकरण के बाद उपरिम अवस्था में विद्यमान, उपरिम अवस्था है, उपरिम स्थिति नहीं कहा, यानी अंतरकरण हो चुका, अब कहते क्षपक के छह अवलियों के भीतर बंधे हुए समय प्रबद्ध असंशुद्ध यानी अनुदीरित रहते हैं। ये तो हमने पहले भी समझा था ना, परंतु अभी तो यानी अभी तक क्या होता था, बंध के बाद एक आवली के बाद उदीरना चालू होती थी, अब क्या बताया है, अंतरकरण होने के पश्चात अब यहाँ जो बंद होगा वो छह आवली तक अनुदीरित रहेगा, उसकी उदीरना नहीं होगी, ये बात यहाँ बता रहे। फिर देखते इसको, अंतरकरण के बाद उपरिम अवस्था में विद्यमान क्षपक, यानी इसके पश्चात वाली अवस्था, अंतरकरण कर दिया है, अब यहां भी बंध तो चलेगा, किसका चलेगा? पांच का, अंतरकरण हुआ है अभी, वहां दो का उदय है ना, एक वेद है और एक कषाय है, और बंध पुरुष वेद और चार संज्वलन का। तो यहाँ कहते हैं अभी क्या है, छह अवलियों के भीतर बंधे हुए समय प्रबद्ध असंक्षुब्ध रहते हैं, यानी बंधने के बाद छह अवली तक उसकी उदीर्णा नहीं होती, अपनी भाषा में आबाधा काल तो और उससे बड़ा होता है। देखो हमेशा क्या होता है, उसको पहले सुनो, अभी किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध किया तो उसकी आबादा कितनी है, 7000 वर्ष। इतनी आबादा होने पर भी वो तो बंध के समय की पोजीशन बताएगी, एक आवली बीत जाती है बंध के बाद तो क्या होता है, ऊपर के सभी परमाणुओं से कुछ कुछ परमाणु उदीर्ण होकर नीचे आते हैं, आवली तो ऑलरेडी बीत गई है, उसके बाद उदय के समय से सर्वत्र दिए जाते हैं, उदय में भी वो विद्यमान है, यानी उसका उदय भी शुरू हो जाता है उदीर्णा के द्वारा उदय। ऐसा देखे जाए तो 7000 वर्ष की हम आवादा कहेंगे, परंतु कुछ परमाणु तो एक आवली के पश्चात ही उदय रूप होकर फिरना चालू हो जाएगा, ऐसे यहाँ कितना समय लगेगा, तो कितने 6 आवली तक तो उदीर्ण नहीं होगी, यहाँ बंधे हुए की बात अनुदीरित, असंक्षुब्ध का अर्थ उन्होंने अनुदीरित किया। छावली के बाद उनकी उदीर्णा वो फिर वहां पाए जाएंगे। अब कहते हैं वे समय प्रबद्ध चारों ही कषायन संबंधी सभी स्थिति भेदों में और सब अनुभागों में पाए जाते हैं। ये जो समय प्रबद्ध है, ये जो बंदे हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी स्थितियों में पाए जाते हैं और सभी अनुभागों में पाए जाएंगे। अब यहाँ उसका स्पष्टीकरण करेंगे 149 पर। यह प्रथम भाष्य गाथा मूल गाथा के पहले अर्धभाग का आश्रय कर अंतरकरण से उपरिम अवस्था में, ये बात महत्व की है, तो अंतरकरण से उपरिम अवस्था में चारों संगलनों के इतने समय प्रबद्ध उदीर्णारूप क्रिया से रहित प्राप्त होते हैं और उनका स्थिति और अनुभाग में अवस्थान इस रूप से होता है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष के निर्णय का विधान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वह जैसे छन्नम आवलियानम ऐसा कहने पर अंतरकरण के बाद उपरिम अवस्था में विद्यमान क्षपक के छह आवलियों के भीतर जो बद्ध समय प्रबद्ध है, वे नियम सा निश्चय से ही उदय में असंक्षुब्ध यानी उदीर्णा से रहित, अनुदीरित कहा था ना, रहते हैं, क्योंकि अंतरकरण करने पर उसके बाद छह आवली काल जाने पर उदीर्णा होती है, ऐसा नियम देखा जाता है।
अंतरकरण के पहले तो एक आवली के बंधे थे, उसकी भी छह आवली तक उदीर्णा,
उसकी नहीं अभी बंधे हुए की बात,
अंतरकरण से अंतर तो बंधे हैं काल,
अभी बताए ना, अंतरकरण से उपरिम अवस्था में जो समय प्रबद्ध है उनकी बात चल रही, अब कहते सवैसु ठिधि विशेषु ऐसा कहने पर तो असंक्षुब्ध समय प्रबद्ध चार संज्वलन संबंधी सब स्थिति विशेषों में और सब अनुभाग के भेदों में नियम से अवस्थित रहते हैं। एक भी स्थिति विशेष में और अनुभाग विशेष में उनके अवस्थान का प्रतिषेध नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रश्न है मुझे पता है, उसका मैं तो अभी उत्तर नहीं देने पाऊंगी। अभी तो जो हम वो कथन कर रहे उसी को समझेंगे हम, क्योंकि पूरा विषय समझे बिना हम शायद हो सकता है अपने प्रश्नों का उत्तर आ जाए आगे। वो तो स्वयं बता रहे कि एक भी स्थिति विशेष में उसका निषेध नहीं। यद्यपि यहाँ पर बंद से उपरिम ऊपरी से हुआ है, अवसान यानी सब में है, अवसान प्रतिषेध नहीं है, दो बार निगेटिव यानी उसकी सत्ता है। अब कहते यद्यपि यहाँ पर बंध से उपरिम सत्वरूप स्थितियों में और सत्वरूप अनुभागों में विवक्षित समय प्रबद्धों का सर्वत्र अवस्थान संभव नहीं है, तो भी क्या कहते हैं? अब आवादा की बात छोड़ो, ये क्या कहना चाहते हैं? अभी उन्होंने क्या बताया? सत्ता में जो ऑलरेडी पड़े हैं, ये सत्ता में पड़े हैं, जितने सत्ता के निषेध के उतनी तो स्थिति बनती नहीं, हमेशा जो सत्व स्थिति है उससे कम स्थिति बनती है, इतने ही बंद है। तो कहते हैं इसके जो ऊपर वाले हैं इसमें तो है ही नहीं वो, क्योंकि इतने ही बंद है ना। तो यहाँ कहते हैं यद्यपि यहाँ पर बंद से उपरिम सत्वरूप स्थितियों में, जैसे स्थिति में लगाना वैसे अनुभाग, अनुभाग भी जितना सत्ता में अनुभाग है उतना तो बनता नहीं, उससे हीन अनंत गुना हीन बनता है। तो जितना बंद है, देखो फिर पढ़ती, यहाँ पर बंद से उपरिम सत्वरूप स्थितियों में और सत्वरूप अनुभागों में विवक्षित समय प्रबद्धों का सर्वत्र अवस्थान संभव नहीं है, तो भी उन्होंने पूछा था वो समय प्रबद्ध में, समय प्रबद्ध के जितने निषेध है उसकी बात, तो भी अपने बंध योग्य, ये शब्द डाला, अपने बंध योग्य सब स्थिति और अनुभाग के भेदों का ग्रहण कर सब स्थिति विशेषों में और सब अनुभाग विशेषों में उनका अवस्थान नियम से पाया जाता है, यह इस सूत्र में कहा गया है। और इस प्रकार का विशेष निर्देश सूत्र में नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्याख्यान से उस प्रकार के विशेष का ज्ञान हो जाता है। ये आपके भी प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? भी जितने बंदे हैं उसमें सर्वत्र है, प्रश्न क्या पूछा था कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बंदे तो इतने ही, इसके ऊपर तो जो स्थिति उसमें तो उस रूप से तो बंद नहीं होता, और फिर जो आबाधा है उसमें भी वो निषेक नहीं थे तो उसमें भी नहीं है, तो जितने बंदे उसमें तो उसका अवस्थान है सर्वत्र है। और जितने रेंज में उस नहीं 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 इसमें इतने बंदे ना, इसमें सर्वत्र है उसके परमाणु, और जिस रेंज में अनुभाग बंदा उसमें भी सर्वत्र है। ये समझ में आती है? ये उदय का समय है और ये ऊपर इतने बंदे उसके ऊपर का, ये निषेकों की अपेक्षा, तो ये समय प्रबद्ध है। तो इस समय प्रबद्ध के परमाणु कहाँ कहाँ है? तो कहते सभी निषेकों में। तो कहेंगे यहाँ इन निषेकों में कहाँ है, यहाँ किधर है? ये तो अबाधा के बीच वाले निषेक है, इसमें कहाँ है? कहते बंधे हुए जो निषेक है उसमें सर्व। अब ये तो निषेकों की स्थिति की रेंज बताए, अनुभव की अपेक्षा बताएंगे हम, तो अनुभाग भी हम ऐसा दिखाएंगे हीन से उत्कृष्ट अत्यंत, यानी वो तो जितना उत्कृष्ट अनुभव है उतना तो नहीं बनता है, उससे कम अनुभाग बंधेगा, ये बंधे योग्य अनुभाग है, बीच वाली रेंज बनती है उसमें भी, उदय में तो जगन है परंतु बंधे वाली तो बीच वाली रेंज होती है। तो जितने बनते हैं जिस रेंज में वहां सर्वत्र यानी हर अनुभाग रूप से वे परमाणु पाए जाएंगे, अभी बंधे हुए, बंधे हुए हर स्थिति के भेदों में भी है और बंधे हुए जो अनुभाग की अपेक्षा उसके जो भेद है उसमें भी सर्वत्र है। अभी तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा ना, अभी तो और बताएंगे। एक अभी आगे बढ़ते तो कहते ऐसा तो कुछ सूत्र में बताया नहीं था, तो कहते व्याख्यान से उसका स्पष्टीकरण हो जाता। अब नीचे विशेषार्थ इसी का दिया, अंतरकरण क्रिया संपन्न करने के बाद चारों संवरणों का जो नवीन कर्म बंध होता है वह सब स्थितियों और सब अनुभाग विशेषों में पाया जाकर छह अंगुली काल तक उदीर्णा के अयोग्य रहता है। यह इस कथन का तात्पर्य। अब यहाँ पर शंकाकार का कहना यह है, इस जीव के प्रत्येक समय के नवीन बंध में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उससे सत्व स्थिति और सत्वानुभाग अधिक होता है। सत्व स्थिति ने जो सत्ता में पड़े निश्चय को तो अधिक स्थिति वाले है, अनुभाग भी ज्यादा है क्योंकि बंध उससे हीन बनता है। इसलिए नवीन बंध के प्रदेशों का उत्कर्षण सब स्थिति सत्व स्थितियों और सब सत्व रूप अनुभागों में न हो सकने के कारण क्यों नहीं हो सकता उत्कर्षण? उत्कर्षण छह अवली का नियम उत्कर्षण में नहीं लगता, वो तो सत्ता के निश्चय कुछ रूप होते, परंतु उत्कर्षण होने के लिए बंध की अपेक्षा, बंध अधिक हो तो उत्कर्षण कहेंगे, बंध ही कम हो रहा है तो उसमें उत्कर्षण कैसे कहेंगे? उस परमाणु में नहीं होगा, परंतु पहले हुए उस रूप हो सकते हैं उसमें। अगले ने कहा कि उसने सत्ता में पड़े हुए की बात है, परंतु उत्कर्षण हमें अभी बंधे हुए की बात चल रही है, उसमें तो कुछ नहीं होता है ना अवली काल से। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रश्न क्या था कि जो बंदे हैं उसमें सत्व स्थिति तो अधिक वाले हैं, तो उसका तो उत्कर्षण सभी में होना ही संभव नहीं है क्योंकि बंदे छोटा है। उनका सब स्थितियों सब अनुभागों में पाया जाना कैसे संभव होगा, क्योंकि सूत्र में बताया सभी में पाए जाते हैं और बंदे तो कम वाला होता है, तो ऊपर की स्थितियों में कैसे पाए जाएंगे, ये प्रश्न है। समाधान यह है कि चारों संयोजनों के नवीन बंध की उस काल में जितनी स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है, नवीन बंध की जो स्थिति है उस सीमा तक, वहां तक ही बात है, उस सीमा तक ही सब स्थिति विशेषों में और सब अनुभागों में नव बंध का उत्कर्षण होता है। इसलिए उस सीमा तक ही नवक बंध का उत्कर्षण द्वारा सद्भाव पाया जाता है, ऐसा अर्थ विशेष यहाँ व्याख्यान से समझ लेना चाहिए, जो उत्कर्षण के नियम को ध्यान में रखकर व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है। यानी इतनी स्थितियों में पाया जाता है, अभी वो बंध की अपेक्षा कहो उसकी को उत्कर्षण कहा तो उसमें कुछ बात नहीं है, यानी सत्ता के जो इन बिटवीन निषेक है उसमें ये पाया जाए, वो तो उसको उत्कर्षण कहने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने नाम क्यों दिया पता नहीं है, फिर भी ये हो सकता है कि यहाँ के परमाणु भी यहाँ आएंगे, परंतु हम बात तो नवीन बंधे हुए की कर रहे, तो अपनी अपनी जगह तो वो विद्यमान है ही। अथवा दूसरे पद्धति से बता, चारों ही संयोजनों की सब स्थिति विशेषों में और सब संग्रह पुष्टियों में समय के अविरोध पूर्वक वह प्रदेश पुंज छह अवलियों के भीतर जब तक संक्रांत नहीं होता तब तक वह उदीर्णा के प्रायोग्य नहीं होता, इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा का उत्तरार्ध कहा। क्या विशेषार्थ में बताते हैं, अभी संक्रांत नहीं होता कहा, संक्रांत यानी संक्रमण, विशेषत अनुपूर्वी संक्रमण के कारण, यानी उस कारण भी नवक बंध की छह अवली के बाद उदीर्ण होने रूप व्यवस्था यहाँ गठित कर लेनी चाहिए। वैसे परमार्थ से देखा जाए तो अंतरकरण क्रिया के संपन्न होने के प्रथम समय से लेकर उदीर्ण छह अवली के बाद ही होती है, ऐसा नियम है। ये तो वहाँ जो विशिष्ट अनेक बातें होती उसमें से ये एक बात है कि अब छह अवली के बाद ही उदीर्णा होगी उसकी। यानी कोई कहेगा, कोई ऐसा कहेगा दूसरे का क्षय रूप होकर संक्रमित होगा और फिर बाद में उसकी उदीर्णा होगी, तो कहते हो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब इसी गाथा के सूत्र का स्पष्टीकरण के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते, उनको भी पता है इसमें बहुत प्रश्न है तो और स्वयं विभाषा करेंगे इसकी विभाषा। अब इस प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। जत्तो पाए अंतरम कदम तत्तो पाए समय पबद्धो छसु आवलियासु गदासु उदीरिज्जति। जहां जाकर अंतरकरण क्रिया को संपन्न किया है वहां से लेकर, जब तो पाए तब तो पाए नहीं, वहां से लेकर बद्ध समय प्रबद्ध यानी बंधे हुए समय प्रबद्ध छह आवली प्रमाण काल जाने पर उदीरित होता है। यानी वहां जो अभी समय प्रबद्ध होगा तो आवली छह आवली तक तो उसकी उदीरना नहीं होगी। जहां जाकर अंतरकरण क्रिया संपन्न हुई है वहां से लेकर जो समय प्रबद्ध बनता है वह नियम से छह अवली प्रमाण काल जाने पर उदीरित होता है। ये तो अभी यहाँ छह अवली का नियम है। इससे पूर्व नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस नियम के हो जाने पर इस कारण छह अवली संबंधी समय प्रबद्ध छह अवली तक लगातार जो बंधे हैं वे समशुद्ध स्वरूप होकर इस स्थान पर प्राप्त होते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी अभी छह अवली के बाद वो तो आएंगे नीचे, उसके लिए यहाँ अभी बताते हैं। अंतरादो कदादो तत्तो छसु आवलियासु गदासु तेन परम छन्नम आवलियानम समय पबद्धा उदये अच्छुद्धा भवंती। अंतरकरण करने के अनंतर समय से लेकर छह आवलियों के व्यतीत होने पर उसके बाद सर्वत्र ही छह आवलियों संबंधी जो समय प्रबद्ध है वे उदय में अक्षुब्ध होते हैं। पहले असंशुभ कहा था, अतः यह नियम है। इसलिए यह नियम है क्योंकि अभी पहले जो नियम बताया है छावली का, इसलिए अंतरकरण क्रिया के संपन्न करने के अनंतर समय से लेकर छह आवलियों के व्यतीत होने पर वहां से आगे सर्वत्र ही छह आवलियों संबंधी जो समय प्रबद्ध हैं वे नियम से उदय में असंशुद्ध होते हैं। यह इस सूत्र का समुच्चय पड़ता है। अब इस सूत्र का भावार्थ कहते हैं, वह जैसे अंतर्गर्म करने के अनंतर प्रथम समय में एक आवली प्रमाण नव बंध समय प्रबद्ध उदय में अक्षुब्ध होते हैं, फिर भी इतनी ही समय प्रबद्ध अवस्थित होकर अंतरकरण करने के प्रथम समय से लेकर एक आवली प्रमाण काल के अंतिम समय तक प्राप्त होते हैं। उससे आगे एक एक समय प्रबद्ध क्रम से अधिक होकर द्वितीय आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उस काल में दो आवली प्रमाण समय प्रबद्ध उदय में असंशुद्ध होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक आवली वाले एक एक करके एक आवली वो भी असंशुद्ध, फिर और एक एक समय करके दो आवली वो भी ऐसे ही रहे, पुनः वहां से लेकर उनके ऊपर एक एक समय प्रबद्ध अधिक होकर तीसरी आवली प्रमाण काल के जाने पर तीन आवलियों संबंधी समय प्रबद्ध अनुदीरित होते हैं। अनुदीरित दी बराबर करना, फिर भी वहां से लेकर चार आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उस समय चार आवलियों संबंधी समय प्रबद्ध उदीर्णा पर्याय से विमुख प्राप्त होते हैं। अभी उनकी भी उदीर्णा नहीं है। पुनः वहां से लेकर पांच आवली प्रमाण काल के विदित होने पर उस समय पांच आवली प्रमाण समय प्रबद्ध उदय में अक्षुब्ध होते हैं। पुनः वहां से लेकर आवली प्रमाण काल के विदित होने पर छह आवली संबंधी समय प्रबद्ध उदय में असंक्षुब्ध स्वरूप प्राप्त होते हैं।
ये आवली
तो पहले एक एक समय करके छह आवली हुई है, तो ये सभी अनुदीरित है, ये बात बताई। इससे आगे सर्वत्र छह आवली प्रमाण समय प्रबद्ध यथास्थित स्वरूप रहकर उदय में अक्षुब्ध होते हैं। यानी अभी छह आवली पूरी हुई तो पहले समय वाला जो है वो अभी एक का उदीर्ण हो गया, नया बंधेगा वो छह आवली में इंक्लूड करो, और जिसके छह आवली पूरी हुई है वो अभी उदय रूप होगा, यानी उदीर्ण रूप होकर उदय होगा। उससे हाँ उस जो जिसका जिसका छह आवली बीत गया उसका उसके उदीर्ण चालू हो जाएगी। इस कारण से अंतरकरण करने के बाद प्रथम समय से लेकर छह आवलियों के जाने पर उससे आगे छह आवलियों संबंधी समय प्रबद्ध नियम से उदय में अक्षुब्ध होते हैं। शेष सभी समय प्रबद्ध उदय में संक्षुब्ध होते हैं। योग कथन का तात्पर्य, शुब्ध और संक्षुब्ध एक किया, और अक्षुब्ध या असंक्षुब्ध एक है। विशेषार्थ, यहाँ पर उदय असंक्षुब्ध का अर्थ उदीर्ण स्वरूप नहीं होते, तथा उदय संक्षुब्ध का अर्थ उदीर्ण रूप होते। उदय में आना नहीं आना इन्हें उदीर्ण की बात चल रही है। उदय असंक्षुब्ध का अर्थ क्या गया, उदीर्ण स्वरूप नहीं होता, और उदय संक्षुब्ध का अर्थ उदीर्ण रूप होते हैं, यानी छह आवली काल जाने के बाद ही उदय में आते हैं। इस प्रकार इस अर्थ को ध्यान में रखकर पूरे प्रकरण का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। टीका में जो अंतर कद पढ़म समय पहुड़ी छसु इत्यादि वचन कहा है, सो उसका यह भाव है कि अंतरकरण क्रिया संपन्न करने के बाद जब जो भी नवक बंध समय प्रबद्ध होता है वह सब छह आवली काल तक उदीर्ण रूप नहीं परिणमता, यह अर्थ सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए। एक ही बात है, जो नए बंधे हैं वो छह आवली काल तक उसकी उदीर्ण नहीं होती। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा समय प्रबद्धों के संक्षुब्ध और असंक्षुब्ध भाव का निरूपण करके अब सभी भवबद्धों के उदय में नियम से संक्षुब्ध भाव का कथन करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। ऊपर का अभी आया नहीं नंबर 411 के बाद सूत्र है, हम केवल सूत्र ही पढ़ते हैं। भवबद्धा पूर्ण नियमा सर्वे उदय संचुद्धा भवन्ति, परंतु सब भवबद्ध समय प्रबद्ध इस क्षपक के उदय में नियम से संक्षुब्ध होते हैं। संक्षुब्ध होते का यानी उदीर्ण रूप होते हैं, यानी उदय में पाए जाते हैं। सभी भवबद्ध समय प्रबद्ध नियम से इस क्षपक के उदय में संक्षुब्ध होते हैं, क्योंकि इस क्षपक के एक भी भवबद्ध समय प्रबद्ध उदय में असंक्षुब्ध स्वरूप नहीं उपलब्ध होता। हमने क्या देखा था, ऑर्डिनरी अलग अलग समयों में बंधे हुए, उसके हरेक का अपना अपना एक एक निश्चय उदय रूप होता है। वैसे ही भवबद्ध ने अभी अंतरकरण के पूर्व में जो बंधे थे सबके आवली के ऊपर बीत गया है ना, तो वो सभी समय प्रबद्धों में से कुछ न कुछ परमाणु उदय में हो गए ही हो गए।
उदय में फिर ही जाएंगे ना।
हाँ, परंतु उदय में है अभी, ये बताएं अभी उदय रूप है। पहले निकल भी गए परंतु अभी उदय वाली स्थिति में है कि नहीं, ये प्रश्न चल रहा है। देखो और इसको भी समझाएंगे। और सभी भवबद्ध समय प्रबद्ध नियम से इस क्षपक के उदय में संक्षुब्ध होते हैं, क्योंकि इस क्षपक के एक भी भवबद्ध समय प्रबद्ध उदय में असंक्षुब्ध स्वरूप नहीं उपलब्ध होता।
इसका भावार्थ अभी तो भावार्थ बताएंगे।
एक भव में बद्ध समय प्रबद्धों के अंतर्गत यद्यपि एक समय प्रबद्ध का परमाणु इस क्षपक के उदय में संक्षुब्ध होता है, यही कारण है कि सब भवबद्ध समय प्रबद्ध इस क्षपक के उदय में संक्षुब्ध होते हैं, यह इसका तात्पर्य है। और यह भवबद्ध से संबंध रखने वाला अर्थ निर्देश यद्यपि इस प्रथम भाष्य गाथा सूत्र में नहीं है, तो भी आगे कही जाने वाली चौथी भाष्य गाथा सूत्र का अवलंबन लेकर चूर्ण सूत्र में व्याख्यान किया गया है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। आगे की भाष्य गाथाओं में इसका विशेष स्पष्टीकरण आएगा, फिर भी उसको यहीं पर बताया उन्होंने। आगे कहे जाने वाले अर्थ का पहले व्याख्यान किया जाता है और पहले कहे जाने वाले अर्थ का पीछे भी व्याख्यान किया जाता है, ऐसा न्याय है। यानी ये कोई दोष नहीं है, पहले बता। इस प्रकार प्रथम भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। अब कहते एतो विधीय भाषगः, अब इससे आगे दूसरी भाष्य गाथा का अवतार करते हैं। प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा करने के अनंतर इससे आगे दूसरी भाष्य गाथा का अवतार करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यहां देखेंगे ये गाथा 143, ये दूसरा नंबर नहीं दिया इसको, ये भाष्य गाथा, इसलिए भाष्य गाथा को भी दिए थे क्या पहले 196। नीचे भी देना, अभी हम पढ़ेंगे गाथा। जाचा विभज्यमानी आवलिया हो दीपड़म किट्टीये पूवावलिया नियमा अनंतरा चतुसुकीर्तिषु। जो बद्यमान आवली है वह प्रथम पृष्टि अर्थात क्रोध संज्वलन की प्रथम पृष्टि में पाई जाती है। उसके अनंतर जो पूर्व अर्थात प्रथम आवली है वह नियम से चार पृष्ठियों में पाई जाती है। अब इसका अर्थ बताएंगे। यह दूसरी भाष्य गाथा क्रोध संज्वलन के नवक बंध कर्म प्रदेशों का संग्रह पृष्ठियों में संग्रह इस क्रम से होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे जा चावी बज्जमानी, ऐसा कहने पर जो नियम से बद्यमान आवली अर्थात बंधावली है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। बद्यमान आवली यानी बंधावली, वहां कर्म प्रदेशों के बनते समय उसके संबंध से बद्यमान आवली की भी उपचार से बंधावली संज्ञा बन जाती है। वह नियम से क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्टि में पाई जाती है, क्योंकि जब तक बंधावली अतिक्रांत नहीं होती यानी बीत नहीं जाती, यानी बंधने के बाद जब तक एक आवली काल बीत नहीं जाता तब तक उसका कर्म प्रदेश पुंज अपवर्तन पर प्रकृति संक्रम आदि क्रिया के अयोग्य होता है। पूर्वावलिया नियमा अनंता अनंतरा चतुर्थी किट्टी से, ऐसा कहने पर उससे अनंतर उपरिम जो द्वितीय आवली है वह नियम से चार पुष्टियों में जानी चाहिए, इसका भावार्थ। क्रोध संज्वलन के प्रथम संघ में पुष्टि स्वरूप से बद्ध कर्म पुंज वहाँ बंधावली प्रमाण काल तक तदवस्थ रहकर पुनः द्वितीय आवली के प्रथम समय में बंधावली का अतिक्रम हो जाने के कारण क्रोध की ही दो संग्रह पुष्टियों में और मान की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रामित होती है। इसलिए यह द्वितीय आवली क्रोध की तीनों ही संग्रह पुष्टियों में और मान की प्रथम संग्रह पुष्टि में नियम से पाई जाती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये छह आवली का नियम उदीर्णा के लिए, परंतु आवली का नियम संक्रमण के लिए। अभी यहाँ क्या चलेगा? ऊपर से क्रोध की प्रथम संग्रह, द्वितीय संग्रह, तृतीय संग्रह। प्रथम अभी उसका कृष्टिकरण हुआ है, कृष्टि वेदक भी चलेगा, तो उदय किसका है? कृष्टि का उदय चलेगा, तो नया बंध भी कृष्टि रूप से होगा। तो ये जो नया बंध हो रहा है, तो यहाँ पर प्रथम या नया बंध के बाद भी अभी छोड़ दो, प्रथम संग्रह कृष्टि रूप से बंध रहा है। बंध किस रूप से हो रहा है? प्रथम संग्रह। अब वो किसमें किसमें ट्रांसफर होगा? एक तो अनुपूर्वी संक्रम है, मान में ही जाएगा। तो ये प्रथम संग्रह पुष्टि का जो बंधा अभी समय प्रबद्ध है, आवली के बाद क्रोध के द्वितीय रूप से होगा, क्रोध के तृतीय रूप से होगा और मान के प्रथम रूप से। देखो इन्हें कौन किसमें किस रूप से हो सकता है, उसके भी नियम है ना। हमने ये तो हर एक में इसे तीन तीन संग्रह पुष्टि, हर एक में ये पूरी संग्रह पुष्टि है, यानी संग्रह पुष्टि 12 हुए ना टोटल। हम ये लोभ की, माया की, मान की और क्रोध की, ये पूरी इसमें अनंत अनंत है। अभी इसका जब पुष्टि का बंध चल रहा है, इसका जब वेदक यानी इसका उदय रहते, तो इसी का बंध होता है, इसका 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 सबका बंध तो होगा, प्रथम संग्रह पुष्टि जैसा बंध होगा। अब बंध इसका एक आवली बीत गया, अंतर्मूर्त तक तो चलेगा इसका, तो एक आवली के बाद ये जो बंधे हुए परमाणु है किस रूप से बंधे हैं? प्रथम पुष्टि रूप से, उसका संक्रमण होगा, ये द्वितीय संग्रह पुष्टि रूप हो गए, तृतीय संग्रह पुष्टि रूप हो गए और मान की प्रथम रूप हो गए, उससे आगे मान की द्वितीय वगैरह रूप नहीं होगी, इतना ही हो सकता है। फिर पढ़ेंगे इसको, क्रोध की प्रथम संग्रह जैसा, हर एक का प्रथम संग्रह जैसा
होगा,
मान के मान जैसे हो गए, कोई बात नहीं, वो उसके अपने अपने योग्य वहाँ बंधेगी, क्योंकि बंध तो सबका चल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं अभी हम, यहाँ क्या लिखा है नीचे से ना, हम भावार्थ पढ़ेंगे फिर दोबारा, पांचवी लाइन नीचे से मिला ना शंका के ऊपर। क्रोध संज्वलन के प्रथम संग्रह पुष्टि स्वरूप से बद्ध कर्म पुंज वहां बंधावली प्रमाण काल तक तदवस्थ रहकर, तदवस्थ ने अपने स्वरूप से रहकर, तदवस्थ अपने ही रूप से रहकर पुनः द्वितीय आवली के प्रथम समय में, क्योंकि उसका बंधावली काल बीत गया है, तो दूसरी आवली के प्रथम समय में बंधावली का अतिक्रम हो जाने के कारण, बंधावली बीत गई है, इसलिए क्रोध की ही दो संग्रह पुष्टियों में और मान की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रामित होती है। आवली के बाद संक्रमण शुरू हो जाता है, इसलिए वह द्वितीय आवली क्रोध की तीनों ही संग्रह पुष्टियों में और मान की प्रथम संग्रह पुष्टि में नियम से पाई जाती है। द्वितीय आवली पाई जाती है ना, द्वितीय आवली में वो संक्रमण के कारण वो सर्वत्र पाए जाते हैं। पहली आवली अपने रूप से रही, ये क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि की बात हो रही है, एक आवली तक वो अपने रूप रही, दूसरे अवली में क्रोध की पहली दूसरी तीसरी और मान की पहली रूप से होगी। यहाँ तक ख्याल में आएगा? शंका, बंधावली के अतिक्रांत होते समय ही वह प्रदेश पुंज शेष समस्त संग्रह पुष्टियों में क्यों नहीं संक्रमित हो जाता? ये केवल मान के प्रथम तक ही क्यों रुका? मान के द्वितीय तृतीय फिर माया के फिर लोक के सब रूप क्यों नहीं हो रहा? ये पूछा गया प्रश्न। समाधान, नहीं, क्योंकि अनुपूर्वी संक्रम के कारण। ये यहाँ अंतरकरण के बाद अनुपूर्वी संक्रम ही होगा। संक्रम्य मान यानी जिसका संक्रमण होता है। क्या कहा? संक्रम्य मान यानी जिसका संक्रमण होता है वो कौन है? तनव बंध प्रदेश, नवक बंध प्रदेश पुंज के अनंतर अधस्तन तीन संग्रह कृष्टियों में ही संक्रम का नियम देखा जाता है। क्या कहा? अनुपूर्वी संक्रम है, इसलिए यहाँ जो संक्रमित होने वाला नवक बंध के प्रदेश पुंज है वो अनंतर अधस्तन इसके नीचे के तीन संग्रह कृष्टियों में ही संक्रम का नियम है, यानी क्रोध की द्वितीय, क्रोध की तृतीय और मान की प्रथम। इसलिए द्वितीय आवली चारों ही संग्रह पुष्टियों में पाई जाती यह सिद्ध हुआ, क्योंकि उसमें अपने में तो है ही है संक्रमण करके द्वितीय तृतीय में भी और मान में भी। अभी जो बंधा है एक बंधावली तक तो प्रथम पुष्टि क्रोध की प्रथम पुष्टि रूप रहा, दूसरी आवली द्वितीय आवली में क्या हुआ? वो क्रोध की दूसरी तीसरी और मान की प्रथम रूप से परिणमित हुई। तो द्वितीय अवली में अभी पोजीशन क्या है? ये जो नए जो बंधे थे ना, दो अवली पहले बंधे थे, तो कहते वो क्रोध के प्रथम में भी है, द्वितीय में भी है, तृतीय में और मान में भी, चार संग्रह कुष्ठियों में पाए। चार कुष्ठियों ने चार संग्रह कुष्ठियों में क्या कहते चार समय की अवली नहीं लिए?
हाँ,
नहीं नहीं उसकी बात नहीं है। बहुत सारे परमाणु है ना, अनंत परमाणु है। अभी यहाँ कितने परमाणु बन रहे हैं? अनंत बन रहे। किस रूप से बन रहे हैं? प्रथम पृष्ठ रूप से। यहाँ निषेकों की बात नहीं है चल रही है, यहाँ पृष्ठिया बता रहे। किस अनुभाग रूप से बन रहे? अनुभाग। यहाँ निषेक नहीं लेना। प्रथम संग्रह पृष्ठि का उदय चल रहा है। संक्रमण कहाँ चल रहा
है?
द्वितीय स्थिति में चल रहा है। संक्रमण कहाँ हो रहा है? द्वितीय स्थिति। प्रश्न ये क्या था? ये जो नए बंधे हैं, बंधे हुए भी कहाँ पड़े हैं? द्वितीय स्थिति में है ना। ये प्रथम स्थिति में जो आएंगे ये तो बाद में आएंगे, बाद में उसकी उड़ेगा। ये तो अंतरकरण के पश्चात वाली बात चल रही है। अब प्रथम स्थिति बनी नहीं है। छह अवली का नियम अभी चल रहा है। अंतरकरण के पश्चात तो अभी नपुंसक वेद की क्षपना चलेगी, स्त्री वेद की चलेगी, पुरुष वेद की चलेगी, फिर क्रोध का पुष्टिकरण वगैरह वो सब वो उसके आगे की बात चल रही है। अब बंधे हुए की बात चल रही है। बंधे हुए हैं और पुष्टि चालू हो गई अभी। प्रथम संग्रह पुष्टि की बात चल रही है उसकी का। प्रथम संग्रह पुष्टि का द्वितीय तृतीय यहाँ बंध भी हो रहा है ना, पुष्टि रूप से बंध इसी वही तो बात बताए। नए बंधने के बाद आवली काल तक अपने रूप से रहा, दूसरी आवली में संक्रमण चालू हो गया।
नए बंध का भी संक्रमण चालू
उसी का, नए बंध का ही चल रहा है। पुराने बंधे हुए की क्या पोजीशन है उसकी बात नहीं हो रही है। पुराने बंधे हुए में से जो जिनका काल बीत गया वो सब नीचे आ गए, उसकी बात छोड़ो नहीं। अभी मात्र नए बंधे की बात चल रही है। हाँ, वो अपगत वेद होने पर पहले अपूर्व स्पर्धक हुआ फिर कृष्टिकरण हुआ। हाँ बराबर। हाँ पहले कृष्टिकरण हुआ।
हाँ
अभी कब शुरू करना है बंधे के बाद? अभी ये नए बंधे उसकी बात चल रही है, उसका संक्रमण होगा। अभी ये दूसरी आवली में क्या हो रहा है इतनी बात अभी सुनो। पहले आवली में बंधावली थे, कुछ नहीं हुआ। दूसरी आवली में क्या हुआ? संक्रमण हुआ। किस रूप से हुआ? क्रोध का पहला था वो दूसरी रूप हुआ, तीसरी रूप हुआ, मान के पहली रूप हुआ। जब बंधे थे तो आवली काल तक कितने कृष्टियों में उसका माल था? पहले संग्रह कृष्टि में प्रथम क्रोध की प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये सब क्रोध की एक दो तीन संग्रह कुष्टियां हैं। ये चार पांच छह मान की, सात आठ नौ माया की है और लोक की है दस ग्यारह बारह। अब ये प्रथम संग्रह कुष्टि वो प्रथम स्थिति बनी उदय में आई, उसकी बात अभी छोड़ दो। अब नए बंधे हुए की बात चल रही है। वो जो कुष्टियां उदय में आई है तो वो तो स्पर्धकों में से बनी थी, वो उदय में आई, उसकी प्रथम स्थिति बनी। अब इस इसके बाद सोचो, जो अभी बंध रही है उसकी बात सोचो। अभी सुनो पहले, अभी प्रथम स्थिति में उसको मत डालो। अभी उनका नियम चल रहा है ना छह आवली का, वो छह आवली वो सिद्ध कर रहे हैं। अभी तो आपने दो ही आवली सुनी, आपको छह आवली तक जाना है, तब तक आपको थोड़ा शांति रखनी है। अभी पहले आवली में वो बंधावली रूप से रहे, दूसरे आवली में संक्रमण चालू हो गया। तो जब दूसरे आवली में संक्रमण किया तो कितने कृष्टियों में वो बंधे हुए, उस विशिष्ट समय में बंधे हुए, वो कहाँ कहाँ तक पाए जाते हैं? पहली दूसरी तीसरी और चौथी में इस रूप से बंधे हैं। एक बंधावली तक कहाँ थे? बस पहले संग्रह कृष्टि में। बंधावली के बाद द्वितीय आवली में क्या शुरू हुआ? संक्रमण चालू हुआ। तो संक्रमण करके कहाँ कहाँ तक चला गया? चार कृष्टि तक चला। तो दो आवली तक तो इतना ही हुआ, उसके आगे क्यों नहीं गए? तो कहते अनुपूर्वी संक्रमण। ये छह आवली तक जाके समझाने वाले है शायद, अभी तो दूसरी आवली का कार्य चल रहा है।
किसी का वो तो इस दिन में रात में संक्रमित होगा, मतलब लोग का भी हुआ है बस।
हाँ लोग के संक्रमण की बात नहीं चल रही है अभी, क्रोध की बात चल रही
है।
क्रोध की बात चल
रही है, जो बंधा हुआ जो बन रहा है वो भी क्रोध का ही बन रहा है, उसकी बात है।
बंध तो सबका हो रहा है, क्रोध मान माया लोग। अभी क्रोध की कहाँ पाई जाती है उसकी बात चल रही है। मान की कहाँ होगी? उसके अपने में होगी, उसकी भी अपने तीन और माया की एक में होगी। माया की कहाँ होगी? अपने तीन में और लोभ में होगी। लोभ की कहाँ होगी? अपने में होगी, वो कहाँ जाएगी? ख्याल में बात, ये अनुपूर्वी संक्रमण की बात, यानी पहले आवली में बंधावली, दूसरे आवली में संक्रमण चालू है, यानी संक्रमित हुई है, फिर भी उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती है, ये बात बता रहे। इमीडिएट नहीं होता, ये तो पुष्टि की बात है, यहाँ बंधी हुई की बात चल रही है। हाँ पहले बंधा था, क्रोध संयोजन पूर्वावली नियमानंतरा कोह परम संघ किट्टी सर्वेण बद्ध पदेशगम तत्त बंधावली मित्त कालम अच्छीयुन पुनः विधियावली परम समय बंधावली अधिकम मवसेन पुहस वे संग पिट्टिये मान पुण संग पिट्टिये च संका मिज्जति। अभी हम वो मान के प्रथम संग पुष्टि में हुई, अब शंका पूछ रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा भी था कि बंधावली के अतिक्रांत होते समय ही वह प्रदेश पुंज शेष समस्त संग्रह पुष्टियों में क्यों नहीं संक्रमित होता। उसका उत्तर भी पढ़ा था कि क्योंकि अनुपूर्वी संक्रमण के कारण पुष्टियों में संक्रम्यमान यानी पुष्टियों में जिसका संक्रमण होता है नवबंध प्रदेश पुंज के अनंतर अधस्तन तीन संग्रह पुष्टियों में ही संक्रम का नियम देखा जाता है। जिसका संक्रमण होना है वह अपने सहित नीचे के अपना का छोड़कर नीचे के तीन यानी चार में उसका नियम होगा। इसलिए द्वितीय आवली चारों ही संग्रह पुष्टियों में पाए जाते यह सिद्ध हुआ। चारों ही ने चार ही ऊपर क्या बताया था ये सूत्र में ऊपर के 143 जो सूत्र का अर्थ किया था भाष्यगाता का कि जो बध्यमान आवली है उसको मैं फिर पढ़ रही हूँ। वह प्रथम पुष्टि अर्थात क्रोध संज्वलन की प्रथम पुष्टि में पाई जाती है उसको बध्यमान आवली का एक आवली में जो बंधे उसको बध्यमान आवली उसको आवली कह दिया। उसके अनंतर जो पूर्व अर्थात प्रथम आवली है वह नियम से चार पुष्टियों में पाई जाती है। आवली चार पुष्टियों में पाई जाती है अर्थात उसमें उसका संक्रमण होता। पहले आवली में जो एक एक समय बंधे थे अपना अपना आवली काल बीत गया तो उसका संक्रमण होता है तो चार पुष्टियों में पाया जाता है। वो पूरे जो समय प्रबद्ध है ना एक आवली प्रमाण समय प्रबद्ध मान लेते हैं चार समयों में बंधे अलग अलग चार समयों में बंधे थे इसकी बात अलग है चार समय बता रही हूं। तो इसके इसके अपने चार समय बीत गए उसका संक्रमण चालू हो गया इसके बीत गए इसका भी हो गया इसके बीत गए इसका भी होगा इसके बीत गए इसका भी हो गया। तो ये पूरी बंधावली यहाँ पर चार पुष्टियों में पाई जाती है इसमें 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 उसका अवस्थान पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे ये द्वितीय आवली में क्या हुआ। द्वितीय आवली में जो पहले बंधे होते उसकी चर्चा चल रही पहले जो बंधे थे नवक बंधे कहा था उसको एक आवली कल तक अपने रूप से दूसरे आवली में यानी एक आवली बीत जाने पर संक्रमण हुआ संक्रमण कहाँ तक हुआ अपने नीचे तीन में द्वितीय तृतीय और दूसरे का परिणाम विशेषार्थ उक्त दूसरी भाष्य गाथा में बध्यमान आवली से बंधावली का ग्रहण किया गया बध्यमान आवली यानी बंधावली। इसका आशय यह है कि जो भी कर्म बनता है वह अपने बंद समय से लेकर एक आवली काल तक अपकर्षण आदि सकल करणों के अयोग्य रहता है। सकल करण करण यानी संक्रमण करण अपकर्षण करण उदीर्णा करण ये सब करणों के लिए अयोग्य रहता है। उसके बाद द्वितीय आवली का काल प्रारंभ होने पर उस कर्म पुंज का अपकर्षण आदि कार्य होने लगता है शेष कथन स्पष्ट ही है। अब यहाँ तो संक्रमण में लिया है उसको क्योंकि उदीर्णा तो यहाँ पर होती नहीं छावली तक। अब इस भाषा गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे की विभाषा ग्रंथ को कहते हैं विभाषा। अब दूसरी भाषा गाथा की विभाषा करते हैं यह सूत्र सुगम है। जम पदेशगम बज्जमाणयम कोधस तम पदेशगम सौम बंधावलियम कोहस पढ़म संग्रह किट्टिये दिसई क्रोध संज्वलन का जो प्रदेश पुंज बध्यमान है वह पूरा प्रदेश पुंज बंधावली काल तक क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में दिखाई देता है। एक पुष्टि रूप से बंद चल रहा है वो प्रथम संग्रह पुष्टि रूप से ही रहता है क्योंकि क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि स्वरूप से बद्ध किस रूप से बंधा है प्रथम संग्रह पुष्टि स्वरूप से बद्ध नवक बंध प्रदेश पुंज का बंधावली काल तक कहीं अवस्थान को छोड़कर अन्य प्रकार संभव नहीं है। अवस्थान कहाँ है उसका प्रथम संग्रह पुष्टि रूप से ही रहेगा, अन्य किसी रूप से नहीं होगा। यहाँ तक बात ख्याल में? गाथा जो अभी हमने अर्थ देखा है उसी को फिर दोबारा समझा। उसके आगे का सूत्र देखते तदो आवलिया दिक्कंतम तिशुवि कोह किट्टीसु दिशई मानस च पड़म किट्टी है। तिशु वि कोह किट्टी वि यानी द्वि। तदनंतर बंधावली को व्यतीत करके अवस्थित वह नवक बंध कर्मपुंज क्रोध संज्वलन की तीनों संग्रह पुष्टियों में तिशुवि और मान संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में दिखाई देता है। क्रोध के प्रथम रूप से था वही अभी संक्रमित हुआ, तो प्रथम रूप से तो था ही था, द्वितीय रूप से भी थोड़ा हुआ, थोड़े तीन तीसरे में चले गए, थोड़े मान के प्रथम में चले गए, तो अभी चार संग्रह पुष्टियों में पाए जाए। शंका, इसका क्या कारण है? उसका समाधान, वहां बंधावली को व्यतीत करके अवस्थित उसी प्रदेश पुंज का, वो पू के ऊपर बिंदी देना, यानी ये जो प्रदेश पुंज पहले बंदे थे, एक आवली बीत गई, अब उसकी द्वितीय आवली चालू हो जाएगी, तो द्वितीय आवली के प्रथम समय में पूर्वोक्त नियम के कारण संक्रमण करते हुए, अभी संक्रमण करेंगे वो, उसकी उदीर्णा की बात यहाँ नहीं हो रही, क्रोध संज्वलन की तीनों संग्रह पुष्टियों में और मान संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में अवस्थान स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है, यानी वहां भी उसका प्रेजेंस अभी पाया जाता है संक्रमण के कारण, क्योंकि जब प्रथम संग्रह पुष्टि का उदय है तो प्रथम संग्रह पुष्टि रूप से ही बंद हो रहा। द्वितीय तृतीय संग्रह पुष्टि का अर्थ क्या है? वो कम अनुभव वाले, उस रूप से बंद नहीं हो रहा है, उदय भी प्रथम पुष्टि रूप से हो रहा है और बंद भी प्रथम पुष्टि रूप से हो रहा है, क्योंकि प्रथम संग्रह पुष्टि की रेंज बहुत बड़ी है, अनंत है उसमें, तो उसमें यथायोग्य बंद हो रहा है, और द्वितीय और तृतीय रूप से वो संक्रमित होकर एक अवली के बाद उस रूप से बनते चले जाएंगे। हाँ, उस रूप होना का ही अर्थ होता है अनुभव घटना, और मान रूप होना यानी उसके प्रकृति चेंज होना। यहाँ तक बात ख्याल में? अब कहते एवं विद्यावलिया चतुष किट्टीसु दिशई, इस प्रकार द्वितीय आवली चारों संग्रह पुष्टियों में दिखाई देती है। द्वितीय आवली दिखाई देती है, जो नवबंध था वो दो आवली दूसरी आवली में यहाँ दिखाई देता है, चार संग्रह पुष्टियों में दिखाई देता है। इस कारण द्वितीय आवली चारों संग्रह पुष्टियों में व्याप्त हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। द्वितीय आवली व्याप्त होती है नहीं, जो समय प्रबद्ध है नवे, वो दूसरे आवली में चारों संग्रह पुष्टियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार 155 पेज पर आए हम तीसरी लाइन, इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा, यानी ये जो उन्होंने बताया सारा वर्णन किया, दूसरी भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त करके, अब तीसरी भाष्य गाथा की उच्चारणा करके, दूसरी भाष्य गाथा के संबंध से ही उसके अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते तदो जम पदे सगम कोहादो मानस पढ़म किट्टी गदम तम पदे सगम तदो आवलियाय पुन्नाय मानस विधीय तदीयासु मायाय च परम संग किट्टीय संकमदि। इस प्रकार उक्त विधि से जो प्रदेश पुंज क्रोध संज्वलन से मान संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि को प्राप्त हुआ है, वह प्रदेश पुंज तत्पश्चात एक आवली काल पूर्ण होने पर मान संज्वलन की दूसरी और तीसरी तथा माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमित होता। अब क्या कहा? जो पहला एक नवक बंध हमने देखा था बंधावली के बाद संक्रमित हुआ, वो दूसरी आवली थी। अभी जो तीस, अभी हमें क्या लिखा ना, ये जो कुछ प्रदेश यहाँ पर भी आए ना, क्रोध के थे वो उसमें बंधे हुए थे, उसके दो आवली यहाँ पर भी गई। संक्रमित होने के बाद एक आवली तक उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, अपने रूप से पड़ा रहता, तो एक आवली काल यहाँ बिताएंगे। दूसरी आवली समाप्त हुई, तीसरी आवली चालू हो जाएगी, तो अभी यहाँ के परमाणु कहाँ चले जाएंगे? मान के द्वितीय में, मान के तृतीय में और माया के प्रथम में। ये तीसरी आवली, क्योंकि दूसरी आवली जब तक इसके समय प्रबोध की दो, एक आवली तो बंधावली में गई और दूसरी आवली तो संक्रमण में गई, क्योंकि संक्रमण होते ही आवली तक तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अब तीसरी आवली शुरू होगी उसकी, वो एक समय प्रबोध की, तब जाके मान के प्रथम संग्रह कुष्ठि में मान द्वितीय, मान तृतीय और माया प्रथम, वहां तक चले जाएंगे प्रथम। यहाँ तो नहीं नहीं, वो तो वो एक समय प्रबोध कहाँ तक, छह आवली कैसे होती है उसकी बात सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध की द्वितीय तृतीय में, क्रोध की द्वितीय तृतीय में गए पर उसका तो उदय वगैरह कुछ नहीं होगा ना, क्रोध की प्रथम वाला जो कुछ चल रहा है। अभी ये जो संक्रमित हो गए हैं उनका क्या होता है उसकी बात चल रही है। फिर इसको मैं पढ़ती हूँ इसको हिंदी में। इस प्रकार उक्त विधि से जो प्रदेश कुंज क्रोध संवलन के, क्रोध संवलन से मान संवलन की प्रथम संग्रह पुष्टि को प्राप्त हुआ है, वह प्रदेश कुंज तत्पश्चात एक कावली काल पूर्ण होने पर, यानी उसको हम संक्रमणावली कहेंगे, उसमें संक्रमित होकर आया है, वहां एक कावली तक रहेगा, तो पूर्ण होने पर मान संयोलन की दूसरी और तीसरी तथा माया संयोलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमित होता है। उक्त कथन का यह तात्पर्य है, पहले विवक्षित किया गया क्रोध संयोलन का प्रदेश पुंज, हम विशिष्ट प्रदेश पुंज की बात कर रहे हैं, मान संयोलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में द्वितीय आवली प्रमाण काल तक रहकर, उसकी बात है ना, वो विशिष्ट समय का जो एक समय प्रबद्ध था उसकी अपनी बंधावली हुई, तब मान के प्रथम में आया है, उसमें अन्यत्र भी गया है, अभी मान की प्रथम में। अब मान की जो प्रथम है वहां एक आवली तक रहेगा, तो द्वितीय आवली उसने वहां बिताई, अब वो मान की द्वितीय, मान की द्वितीय और माया के प्रथम में आया है, तो कहते काल तक रहकर पुनः तीसरी आवली के प्रथम समय में समय के अविरोध पूर्वक संक्रमण करता हुआ, समय का अविरोध है क्या, आगम के अनुसार संक्रमण करता हुआ वहां से लेकर एक आवली प्रमाण काल तक पूर्वोक्त चारों संग्रह पुष्टियों में पुनः मान संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टियों में और माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में पाया जाता है। अभी हमने देखा था ना वो विशिष्ट प्रदेश कुंज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहले तो एक आवली काल तक अपने रूप से रहा, दूसरी आवली तक चार संग्रह पुष्टि में, अब तीसरी आवली में ये सात तक आए। चार ने क्रोध की पहली, दूसरी तीसरी और मान की पहली। अब ये मान की पहले में जो आया है वो भी उसके नीचे तीन में, ने मान की पहले वाला है, वो मान की तीसरी और माया की पहले में गया, तभी ये एक आवली तक यहाँ था, द्वितीय आवली में चार तक आया, तृतीय आवली में नीचे सात तक आया, माया की पहले तक आया है ना। उनसे अतिरिक्त अन्य संग्रह पुष्टियों में उसके संक्रमण करने की शक्ति उस काल में नहीं पाई, उस काल की बात, अब यहाँ तक ही उसने संक्रमण किया। अब इसी अर्थ का उपसंहार द्वारा कथन करते हुए इस सूत्र को कहते हैं, वो सूत्र कल पढ़ेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्त सदा देत अरुण है।